हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। क्या हुआ है प्रीति, मेरी कौन सी बात तुम्हें इतनी बुरी लग गई कि मेरी तरफ देख भी नहीं रही? इतनी नाराज़गी, इतना गुस्सा क्यों? वहाँ जो हुआ उसमें मेरी तो गलती नहीं थी, फिर मुझसे इतना बेरुखी भरा व्यवहार क्यों कर रही हो तुम? अपना गुस्सा इन बेजान चीज़ों पर क्यों निकाल रही हो? अगर नाराज़गी मुझसे है तो चीखो चिल्लाओ मुझ पर, यूँ खामोश रहकर मेरा दिल तो न जलाओ। प्रीति भावहीन से उसको देखते हुए खामोशी से उसकी बात सुन रही थी। उसने आयुष्मान की आखिरी वाली बात सुनी, उसके चेहरे पर गहरी उदासी, दर्द और विषाद के भाव उभर आए। उसने अपने गालों पर से आयुष्मान की हथेलियों को झटक दिया और दर्द और गुस्से से चीख पड़ी, मैं जला रही हूँ आपका दिल, और आपने अपनी बातों से मेरे दिल को बड़ी ही बेरहमी से टुकड़ों में तोड़कर बिखेर दिया। उसका क्या, मेरी बेरुखी तकलीफ दे रही है? तो जब अपनी बातों से मुझे असहनीय पीड़ा दे रहे थे, तब मेरे तड़प, मेरे दर्द का एहसास क्यों नहीं हुआ आपको? वहाँ जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, ना तो उसके लिए आपको जिम्मेदार भी नहीं ठहरा रही मैं। अगर ठहराया होता तो इस वक्त यहाँ आपके घर में आपके सामने ना खड़ी होती। पर जो तकलीफ आपने मुझे अपने शब्दों से पहुँचाई है, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। इस दर्द के जिम्मेदार आप हैं। और मेरी बेबसी देखिए कि लाख गुस्सा और नाराज़ हूँ आपसे, फिर भी आपके ही पास हूँ, क्योंकि रूठ कर जाने के लिए कोई ठिकाना नहीं मेरे पास। बहुत गुस्सा है अंदर, पर नहीं निकाल सकती आप पर, इसलिए इन बेजान चीज़ों पर अपना गुस्सा निकाल रही हूँ। नहीं देखना मुझे अभी आपका चेहरा, कोई बात नहीं करनी आपसे, आप बस जाएं यहाँ से और अकेला छोड़ दें मुझे और मेरे बेटे को। प्रीति की आंखों में नमी तैर गई थी, चेहरा दर्द, गुस्सा, नाराज़गी, बेबसी जैसे भावों से सना था। अपनी बात कहकर प्रीति वहां से जाना चाहती थी, पर आयुष्मान ने उसकी दोनों बाहों को पकड़कर उसको वापस अपने सामने खड़ा कर दिया और परेशान निगाहों से उसको देखते हुए बोला, ऐसे नाराज़ होकर कहीं नहीं जाने दूंगा तुम्हें मैं। नाराज़गी जाहिर कर ली, गुस्सा दिखा दिया, तो अब इस नाराज़गी और गुस्से की वजह भी बतानी होगी तुम्हें मुझे, कि आखिर ऐसा भी क्या कहा है मैंने जिस बात ने इतनी तकलीफ पहुँचाई है तुम्हें। आयुष्मान का सवाल सुनकर प्रीति ने दर्द भरी मुस्कान लबों पर सजाते हुए कहा, याद कीजिए खुराना साहब, क्या कहा था आपने वहाँ सबके सामने? जब शुरू शुरू में मैं अपने बच्चे को अपना बच्चा कहती थी, प्रेम का खून कहती थी, तो कितना बुरा लगता था आपको, और क्या कहते थे आप मुझे, कि आपने पूरे दिल से हम दोनों को अपनाया है, आपके लिए मैं आपकी पत्नी हूँ और वो आपका बच्चा। और आज क्या किया आपने, सबके सामने कह दिया कि आप इस बच्चे के पिता नहीं, ये आपकी औलाद नहीं। क्या कहा था आपने, कि इस बच्चे से आपका कोई रिश्ता नहीं, वो सिर्फ मेरा बेटा है, उसकी सिर्फ माँ है, बाप का नाम नहीं उसके पास। आपने आज खुद ये साबित कर दिया कि आपने कभी उसे अपना समझा ही नहीं, आज भी आपकी नज़रों में वो मेरा और प्रेम का बेटा है, आपका नहीं। प्रीति के आंसू छलक आए, जिसे बड़ी बेरहमी से पहुँचते हुए उसने आगे कहना शुरू किया, आपकी इतनी कोशिशों के बाद मैं भूल गई थी कि ये बच्चा आपका नहीं, मानने लगी थी कि अगर इस बच्चे की माँ मैं हूँ तो बाप आप हैं और उसके पापा बहुत प्यार करते हैं उससे, पर आज आपके शब्दों ने मुझे एहसास करवा दिया कि ये बच्चा आपका नहीं है और कभी आपका नहीं हो सकता। एहसास करवा दिया मुझे आपने कि आप उसके पापा नहीं हैं, वो सिर्फ मेरा बेटा है। तभी पहले आप उसकी जान की भीख मांगने उस इंसान के पास गए जिसने उसकी माँ और उसको बेसहारा मरने के लिए छोड़ दिया था, जिसने उसकी माँ को एक रात इस्तेमाल करके दुनिया के ताने सुनने के लिए छोड़ दिया था, जिसने उसकी माँ को कभी न भरने वाला जख्म दिया था, और फिर खुद अपने पूरे परिवार के सामने कबूल किया कि ये आपका बच्चा नहीं है। दोनों बातों का गुस्सा आज प्रीति बाहर निकाल रही थी, क्योंकि इन दोनों ही बातों से उसको बहुत दुख हुआ था। प्रेम वाली बात को पहले वो बर्दाश्त कर गई थी, पर आज जब बात खुली तो हर बात खुलकर सामने आ गई। आयुष्मान सुन रह गया उसकी बात सुनकर, उसने तो इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था कि उस वक्त उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या कहा था, और उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रीति उस बात को लेकर उससे इतना नाराज होगी। आयुष्मान ने जब प्रेम वाली बात प्रीति के मुंह से सुनी तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने प्रीति को ये बात नहीं बचाई थी, इसलिए उसके मुंह से ये बात सुनकर वो चौंक गया था। प्रीति जैसे ही चुप हुई, आयुष्मान ने हैरानगी से उसको देखते हुए सवाल किया, प्रेम वाली बात तुम्हें किसने? किसी ने भी बताई हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि जब मैं पहले ही कह चुकी भी कि उस इंसान से मेरा और मेरे बच्चे का कोई रिश्ता नहीं है, तो आप मेरे बच्चे की जिंदगी की भीख मांगने उस आदमी के पास क्यों गए? आप थे ना उसके पिता, तो अपने तरफ से कोशिश करते उसकी जिंदगी बचाने की। अगर उसकी किस्मत में जिंदगी लिखी होती तो जी जाता वो, और अगर मरना होता तो मर जाता। पर आप उस इंसान के कदमों में क्यों गिरे और क्या हासिल हुआ आपको उसके आगे गिड़गिड़ाने से? नहीं दिया ना उसने खून, और अच्छा हुआ नहीं दिया, वरना जब जब मैं अपने बच्चे को देखती मुझे नफरत होती उससे कि उसकी जिंदगी उस इंसान की देन है जिससे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। एहसास होता मुझे कि उसकी जिंदगी बचाने के लिए आप उस इंसान के आगे झुके हैं, और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्रीति की आंखें छलक आईं और वो आयुष्मान के हाथ को अपने कंधों पर से हटाने की कोशिश करने लगी। आयुष्मान महसूस कर पा रहा था उसके शब्दों के पीछे छुपे दर्द को, और उसकी नाराजगी की वजह भी समझ रहा था। पर उसको कुछ भी समझाने से पहले प्रीति के गुस्से को शांत करना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसके गुस्से के आगे वो ना कुछ सुनती और ना ही समझती। एक तरफ प्रीति उसके छूटने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं आयुष्मान ने उसको अपनी बाहों में भींच लिया। प्रीति कुछ देर उसकी बाहों के कैद से छूटने के लिए छटपटाती रही, पर फिर हार कर उसके सीने से लगकर फपक कर रो पड़ी और रोंधे गले से बोली, क्यों गए थे आप उस आदमी के पास? क्यों हमारे बच्चे की जिंदगी की भीख मांगी उससे? क्यों उसके आगे झुके? नहीं जाना था आपको उसके पास, कभी नहीं जाना था। आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा ना कि जब मुझे ये बात पता चलेगी तो कैसा लगेगा मुझे।